श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 9। न च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करूंगा, ये जब ये भगवान बोल रहे हैं कि ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, इसका अर्थ है जगत की सृष्टि करना, पालन करना, प्रलय करना, ये सब बार बार हो रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि इसमें वो बिल्कुल भी आसक्त नहीं है। अब ध्यान देना चाहिए कि इस पे ये तर्क नहीं लगाना चाहिए कि भगवान आसक्त इसमें नहीं है तो किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं है या किसी भी कार्य में आसक्त नहीं है। इस पे हम चर्चा करेंगे कि भगवान किस प्रकार से आसक्त नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि कर्म बंधन तब लगता है जब कर्मों में आसक्ति हो, कर्म फलों में आसक्ति हो, लेकिन भगवान के सारे कार्य उनकी इच्छा मात्र से उनकी शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं, तो उनको उन कार्यों में कोई आसक्ति नहीं होती है, ना उन कर्म फलों में कोई आसक्ति होती है। जैसे भगवान इतनी बड़ी सृष्टि का सहार संरचना करते हैं, तो उनको सहार करने में, प्रलय करने में एकदम भी कोई संकोच नहीं होता कि इतनी मेहनत से बनाया है, अब क्या हो गया। जैसे हम लोग यहाँ घर बनाते हैं और उसका सहार कोई कर दे, प्रलय हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो हम लोग को तकलीफ होती है, लेकिन भगवान को कोई संकोच नहीं होता। तात्पर्य को देखेंगे, इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं है, अर्थात भगवान विरक्त रूप में बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि खाली बैठे हैं, अपितु वो सबसे व्यस्त व्यक्ति हैं। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनकी व्यस्तता आनंद पूर्ण है। हमको अपनी व्यस्तता लगती है जब हम आनंद में नहीं होते हैं, और जब व्यक्ति आनंद में होता है तो उसको अपनी व्यस्तता बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हर क्रिया, हर व्यक्ति जो उसके आसपास है वो उसको सुख देता है। तो भगवान अपने आध्यात्मिक जगत में रहते हैं तो वहाँ पे हर जीवात्मा उनको सुख देने के लिए ही कार्य करता है, हर वस्तु, हर परिस्थिति भगवान को सुख ही देती है। और इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान उस पर निर्भर है, भगवान पूरी तरह आत्माराम है, फिर भी वहां की हर वस्तु भगवान को सुख देती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। तो यानी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो भगवान पूरे जगत की सृष्टि कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, सहार कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इससे वो पूरी तरह से विरक्त हैं, तो समझ में आना चाहिए कि ऐसे भगवान को व्यक्ति प्रभावित, इम्प्रेस नहीं कर सकता है किसी सृष्टि के द्वारा, किसी सहार के द्वारा या कुछ लोगों का पालन करके। ऐसे भौतिक कार्यों से भगवान प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा मात्र से पूरे जगत का सृष्टि, प्रलय, पालन सब कुछ हो रहा है। अगर वो किसी चीज से आकर्षित होते हैं तो वो शुद्ध भक्ति से। शुद्ध भक्ति का लक्षण ही होता है श्री कृष्ण आकर्षणी। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं, और प्रमाण भी है। भगवान विष्णु, हमने सुना है, कारुणोदकशाय विष्णु, शेषशाय विष्णु और गर्भोदकशाय विष्णु, तो आप देख सकते हैं कि भगवान योग निद्रा में आराम कर रहे हैं, उन्हें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तमोगुण में नहीं है, शुद्ध सत्व में है, लेकिन सारी सब कुछ क्रियान्वित हो रहा है उनकी इच्छा मात्र से। इस उदासीनता को यहां पर उदासीनवत कहा गया है, जैसे कि
दो लोग आपस में झगड़ते रहते हैं तो जो उदासीन व्यक्ति है उसका उस झगड़े से कोई सरोकार नहीं होता। तो उसी प्रकार यहाँ पे शब्द यूज आ रहा है, यूज किया गया है उदासीनवत, मतलब इस जगत के झगड़े से, झगड़े टंटा बोलते हैं इसे कहना चाहिए, झगड़ा झाटी से भगवान का कोई संबंध नहीं है। ये आपस में ही यह व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं से ग्रसित होकर के लड़ाई झगड़ा करता है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है किंतु वे उदासीनवत स्थित रहते हैं। सिद्धांत आप समझ लीजिए, प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण देंगे, उसे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है जो अपने आसन पर बैठा रहता है, यानी जज के बारे में बात हो रही है। उसके आदेश से अनेक प्रकार की बातें घटती रहती हैं, किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। किसी ने कोई पाप किया या अपराध किया तो उस अपराध के अनुरूप दंड देने का प्रावधान जज ही करता है। कुछ किसी ने अच्छा कार्य किया है तो उसको पुरस्कार देने का प्रावधान ये जज के द्वारा ही होता है। जज के बिना उस संबंध में कोई क्रिया नहीं हो सकती है, लेकिन जज इस पूरी क्रिया से, फांसी किसी को देना या किसी को पुरस्कार देना, इससे पूरी तरह से निर्लिप्त रहता है, उसका इनसे कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि जज जब अपने घर में जाते हैं तो उनकी पत्नी बच्चे उनके सुख दुख से उसको बहुत प्रभावित होता है, उनसे वो प्रेम का दान प्रदान करता है। ऐसे ही परमात्मा के रूप में भगवान उदासीन रहते हैं और हमारे जीवन में भी उदासीन रहते हैं। जो पाप करना चाहते हो, पुण्य करना चाहते हो, करो, लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तब भगवान एक्टिव होकर के हमें बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा हम उनकी प्राप्ति कर सकें, जिस बात को भगवान आगे बताएंगे। जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं भगवान का, प्रेम से भगवान का सेवा करते हैं, उनको भगवान ऐसी बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वो भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकें। ये अन्यथा रूप से, परमात्मा रूप से भगवान इस ज्ञान को नहीं देते, उदासीन रहते हैं। तो दोनों ही गुण भगवान में है, उदासीनता का गुण भी है और पक्षपात का गुण भी है। भगवान में विरोधाभासी गुण, परस्पर विरोधास्पद गुण हैं, उनका समन्वय हो जाता है, ये ध्यान देना चाहिए, इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है, और इसे कहते हैं अदृष्ट। इस जगत में कुछ भी बाय एक्सीडेंट नहीं होता, बाय एक्सीडेंट कुछ नहीं होता है, अदृष्ट कहा जाता है। अदृष्ट मतलब उस कारण को हम देख नहीं पा रहे हैं, और वो कारण है अंततोगत्वा, वो कारण है भगवान। भगवान के ही नियोजन से सब कुछ के, सभी के जीवन में सब कुछ हो रहा है। वेदांत सूत्र में यह कहा गया है, वैषम्य न निर्गण्येन, वे इस जगत के द्वंद्वों में स्थित नहीं है, मतलब ये मेरा शत्रु है, ये मित्र है, ये सब नहीं, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं, उनसे परे हैं। ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। बहुत सुंदर सी बात है, जैसे सूर्य से विभिन्न विभिन्न पेड़ों को पोषण मिलता है, करेला भी का पेड़ भी सूर्य से पोषण प्राप्त करता है, और आम का पेड़, मतलब रसीले आम का पेड़ भी, तो इन दोनों का पोषण सूर्य करता है अपनी ही स्थिति में रहते हुए, लेकिन सूर्य को इनके प्रगति से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो ये निर्लिप्त रहते हैं, और ये बात भी हम समझते हैं कि सूर्य के बिना इन पेड़ों का, पौधों का पोषण हो पाना संभव नहीं है, ये तो क्लियर है। लेकिन जो फल आ रहा है पौधों में, उसके लिए सूर्य जिम्मेदार नहीं है, वो जो बीज था जो कि धरती में डाला गया वो जिम्मेदार है। उसी प्रकार से पृथ्वी भी सारे गुणों से युक्त हैं, लेकिन जो पृथ्वी में बीज डालते हैं उसके अनुसार वो पेड़ उत्पन्न होता है, पृथ्वी उसमें निर्लिप्त रहती है। पृथ्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पेड़ उग रहा है, लेकिन बीज जो है वो जो पड़ता है उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल आप क्लाउड का ले सकते हैं, बादल वर्षा करते हैं, पेड़ों को सिंचन होता है, लेकिन बादलों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ जल गिरा रहे हैं, वो सब जगह बराबर से जल गिराते हैं, निष्पक्ष रहते इस मामले में, लेकिन क्या उगेगा इसका बादल का इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन बिना बादलों के जल के या सूर्य की रोशनी के या धरती के सपोर्ट के कुछ उग नहीं सकता, लेकिन उगने का जो कारण है वो बीज है, और बीज का अर्थ है हमारी भोग की इच्छा, हमारी विभिन्न भोग की इच्छा हमारे कर्म अनुसार हमें प्रकृति के नियमों के अनुसार विभिन्न प्रकार के अवस्थाओं को प्राप्त होना पड़ता है। लेकिन ये चक्र टूट जाता है, टूट सकता है, टूट जाता है जब जीवात्मा भगवान कृष्ण की तरफ उन्मुख होता है, तब भगवान एक्टिव होकर के उसकी मदद करते हैं ताकि वो मुक्त होकर के भगवान के धाम आ सके। तो ये सारे श्लोक इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं। हरे कृष्णा।